नमस्तेभ्यः ॐ नमस्तेभ्यः ॐ नमस्तेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की तो शुरू को आज के चार कहे गए। अब आ जाता है इदानीं वैयावृत्त लक्षण शिक्षावृतस्य स्वरूपं प्ररूपयन् आह। इन्होंने अतिथि संविभाग का रूप वैयावृत्त के रूप में ग्रहण किया है। अतिथि संविभाग और वैयावृत्त में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अतिथि संविभाग करने से एक प्रकार से उनके दानादि की ही बात आ जाती है, हैं? जबकि वैयावृत्त की दृष्टि से हम देखते हैं तो उनके योग्य और भी हम साधन आदि को जुटाने का प्रयास करते हैं। वो यहाँ पर कहा जा रहा है इदानीं वैयावृत्त लक्षण शिक्षावृतस्य स्वरूपं प्ररूपयन् आह। अब वैयावृत्त लक्षण रूप जो शिक्षावृत है उसका स्वरूप कहा जा रहा है। दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो प्रक्रियमगृहाय विवेन दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो चक्रियमग्रहाय विभवेन। वैयावृत्त का नाम दान है, या दान का अर्थ वैयावृत्त है। वैयावृत्त को इन्होंने दान के साथ एकाधिकरण मानने का प्रयास किया है। देखो वैयावृत्त यानी दान किसको बोलते हैं? तपोधनाय धर्माय, जो तप रूपी धन को धारण करते हैं, धर्म रूप हैं, गुण निधये, गुण ही निधि यानी जिनका धन है, और कोई जिनके पास धन नहीं है किंतु रत्नत्रय धन ही जिनके पास है, उनके लिए विभवेन अपने शक्ति के अनुसार, और दूसरा विशेषण ये दे रहे हैं गुण निधि के लिए अग्रहाय अग्रहाय, जिनके पास ग्रह अगारह यस्य न विद्यते स अग्रह तस्मै अग्रहाय, जिनके पास घर नहीं है, बाहर का और भीतर का दोनों प्रकार का घर नहीं है, बाहर का मतलब दहलान और भीतर का अर्थात रसोई घर, क्या ले बाहर का घर और भीतर का घर का अर्थ द्रव्य रूपी घर और भाव रूपी ग्रह। बाहर से तो ग्रह नहीं है लेकिन भीतर से रह सकता है, और भीतर भी न रहे और बाहर भी न रहे, यानी घर की जिनके पास इच्छा नहीं है उनको अग्रह बोलते हैं, और घर की जिनके पास इच्छा रहती है वे ग्रहे तिष्ठन्ति इति गृहस्था मानते हैं, उनको गृहस्थ कहा जाता है। घर में रह रहे हैं इसलिए गृहस्थ नहीं, और घर नहीं है इसलिए अनगार नहीं, किंतु अग्रहाय का अर्थ बाहरी और भीतरी घर की इच्छा नहीं होना ही उनका अग्रह। तो अग्रह रूप तपस्वी जो गुण के निधि हैं, धर्म रूप हैं, उनके लिए वैयावृत्ति, उनकी वैयावृत्ति करना या उनके लिए दान देना, विभवे न अपने शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति को नहीं छुपाते हुए समय के अनुरूप। विभव क्या है आगे कहा जाएगा, श्रावक देने वाला उसका विशेषण है ये, ठीक है। अपनी शक्ति के अनुसार मतलब अपने शक्ति धन की है, वाचनिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, समय की शक्ति है, समय नहीं है तो कैसे करें, रोगी हुआ सब कुछ है तो कैसे करें, उस समय कराएं, अनुमोदन दें, किसी को लगाएं, भाव रखें, ये सब उसमें आ जाएगा। तो किंतु ये ध्यान रखे, इतना सारा किया जा रहा है तो कुछ तो बदले में लें, हैं? लें या मिलें। तो अनपेक्षित तो उपचार है, उपचार का अर्थ प्रतिदान आदान, हम ये दे रहे हैं आप तो कुछ न कुछ तो दो, आदान प्रदान। तो यह अनपेक्षित आदान की इच्छा नहीं रखना अनपेक्षित तो उपचार माना जाता है। उपचार का अर्थ टीकाकार ने प्रति आदान लिया है, प्रतिदान। प्रतिदान और प्रति आदान में अंतर। हाँ, और उपक्रिय जो शब्द दिया है उसके लिए उन्होंने कहा कोई भी ऐसे उपकरण, कोई मान लो मंत्र मिल जाए, तंत्र मिल जाए, और कुछ भी मिल जाए जिसके द्वारा मेरा उपकार हो जाए, हम आपके ऊपर उपकार कर रहे हैं तो हमारे ऊपर भी तो उपकार करो, ऐसी भावना को लेकर के नहीं। इस प्रकार अनपेक्षित तो उपचार और अनपेक्षित तो उपक्रिय मैंने उपकरण, कोई बदले में इच्छा नहीं रखते हुए, ये कैसी बात होती महाराज, नमोस्तु करते हैं तो कम से कम आशीर्वाद की इच्छा तो होनी चाहिए। तो आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर दान की चर्चा चल रही है, दान दे रहे हो उस दान के बदले में इनसे हमें यह मिले यह इच्छा नहीं। हाँ, पारलौकिक इच्छा जिसको बोलते हैं, आशीर्वाद, शुभाकांक्षा, आशीर्वचन, सद्भावना आदि आदि, ये तो होता ही है। आप यदि आशीर्वाद देंगे तो हमारा कार्य होगा, कौन सा कार्य होगा, जो भी कर रहे हैं सामने वो नहीं, किंतु हम अलौकिक क्षेत्र की बात कहना चाह रहे हैं। जैसे आपको यह अनुभव मिला, पद मिला, रत्नत्रय का लाभ हुआ, उसी प्रकार हमें भी ऐसा आशीर्वाद दो ताकि हम भी आप जैसे बन जाएं। ये भावना तो ठीक, और इसमें लेन देन की बात नहीं होती, इसमें केवल भावों के द्वारा ये भाव किया जाता है, इसका भी भला हो। और आप कुछ भी नहीं करते हैं तो भी उस समय हमेशा हमेशा जो मुनि महाराज हैं या ऊपर वाले हैं, ऊपर का मतलब जो गुणों की अपेक्षा, चारित्र की अपेक्षा से आगे बढ़े हैं, वे एक इंद्र से लेकर के संगी पंचेंद्र तक सब जीवों का और सब संसारी जीवों का भला हो, इस प्रकार अपाय विषय धर्म ज्ञान करते रहते हैं। आप हमारे बारे में कुछ सोचते है ही नहीं, ऐसे कोई कहने लग जाए हम तो कितने दिन से हम आ रहे हैं और आपकी सेवा में तत्पर हैं, आप तो हमारे बारे में कुछ सोचते नहीं। अरे भैया, आप स्वयं अपने बारे में नहीं सोचते होंगे लेकिन आपके बारे में क्या सुनो, किंतु स्वयं आप भले ही अपने बारे में नहीं सोचते होंगे, भले की बात, किंतु वे संत हमेशा हमेशा संसारी जीवों के बारे में सोचते रहते हैं। हाँ, कि वो अपने ढंग से सोचते हैं, आपका ढंग अलग रहता है, उनका ढंग अलग रहता है, उनका सोचना ये रहता है कि सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे, सब जो है कर्मों से मुक्त हो, सबको मुक्ति मिले। तो आप नहीं चाहते क्या मुक्ति अपने आप की? चाहते हैं। तो फिर कैसे सोचते हैं कि महाराज आप हमारे बारे में कोई सोचते ही नहीं है? विशेष कैसे सोचते हैं बोलो? है तुम स्वयं अपने बारे में कोई विशेष नहीं सोचो तो हम कैसे सोचे विशेष? पर्टिकुलर सोचो। उनका कहना है कि औरों के बारे में मत सोचो और हमारे बारे में ही सोचो। एक सामान्य और विशेष, तो पर्टिकुलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हमारे बारे में आप सोचिए, औरों के बारे में बंद करके आप सोचिए, तो माना जाएगा कि हमारे बारे में आपने सोचा। अन्यथा तो काय सोचा, ये तो कम्बाइंड है। आप आशीर्वाद दो तो तब मानेंगे हम, केवल हमारे लिए हो। अब सबके लिए यू कर देते हैं, उसमें तो कोई बटता नहीं है, कुछ नहीं होता, ये कैसी बात है? हमारे लिए कुछ विशेष। तो बात ऐसी होती है कि उनका तो सद्भाव ही पर्याप्त रहता है। कहीं किसी जंगल में बैठे हैं और क्षेमन सर्व प्रजा नाम भावना भा रहे हैं, आप लोगों की ओर देखे, तभी देखे क्या? ये देखो संसारी प्राणी, और क्या देखना, चार गतियों में भटक रहे हैं। सीजंती है प्रशंते इति सत्वा, सर्वा सिद्धि में लिया ना, जो अपने अपने कर्म के उदय से सीज रहे हैं, दुख पा रहे हैं, त्रसित हो रहे हैं, उनका नाम सत्व है। तो सब जीवों का कल्याण हो, सब जीव इन कर्मों से कैसे बचे, ऐसा तो सोचा जाता है। अपाय विचे धर्म ज्ञान वो करते ही रहते हैं, इनके कर्मों का अपाय कैसे हो ये सोचते रहते हैं। तो कौन सा उपाय मैं इन्हें दे दूं ताकि इनका भला हो जाए, सोचते रहते हैं। तो यह सोचना अलग है। इस प्रकार की आप यदि भावना चाहते हैं, नहीं भी भावना पाते हैं तो भी वह कर दिया जाता है। और हमारे भाव के बिना भी आपका कल्याण तो आपके भाव के ऊपर आधारित है। आपने जिस अनुपात से अच्छा भाव किया, उस अच्छे भाव का फल मिलेगा, उसके बीच में कोई भी नहीं आ सकता। ये आप दृढ़ श्रद्धा के साथ करिए, चाहे दिन में करिए, चाहे रात में करिए, कभी भी करिए, किंतु उसमें आपका जो भाव लगा हुआ है वह भाव ही आपको पूर्ण रूपे न फल देगा। हाँ, कुछ समय के लिए भाव किया अच्छा, फिर बाद में बुरा भाव किया, तो जो अच्छा भाव था वो बुरे के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मान लीजिए थोड़े सा जो है अपने मीठा डाला किसी में, फिर इसके उपरांत गुस्से में आ गए किसी के ऊपर, थोड़े से और तो डालो मीठा, ऐसे करने से गुस्सा आ गया, तो फिर नमक के हाथ में थे, नमक ये लो, इतने और ले लो। अब जो तिया किया तो पहले मीठा थोड़ा सा डाला था, क्योंकि महंगा होता है, नमक तो थोड़ा सस्ता होता है ना। अच्छा, मीठे के बराबर तो नमक नहीं है। ये तो हमेशा तुलनात्मक तो रहेगा, 10 गुना भारी, रंग के पैसा से तो इक्वल हो ही गया है, रंग के पैसे से इक्वल। अब डाल दिया, अब क्या हो गया, वो जो पहले जो मीठा डाला था वो अभी नमक का रूप धारण कर लिया। तो काम होता तो है, लेकिन कभी कभी गुस्सा हो जाता है, अब कभी ठंडा हो जाता है, तो ठंडा गर्म करते रहते हैं आप, इसलिए गड़बड़ियां हो जाती हैं। गुस्सा के साथ डालने की अपेक्षा थोड़े से और बिना गुस्सा किए थोड़े से मीठा डाल देते हैं, विवेक समाप्त हो जाता। तो इस प्रकार होता रहता है। आप अपने भावों के ऊपर पूर्ण विश्वास रखिए, भगवान के ऊपर बाद में विश्वास रखिए, क्योंकि भगवान ने बताया है। हाँ, भावों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से बोल तो रहे हैं, 1.5 घंटे तक बोल रहे हैं, तो क्या है, भाव है क्या है? अकेले थोड़े भाव है, वचन के माध्यम से भी बोल रहे हैं और काय के माध्यम से भी बोलते हैं। हाँ, काय के माध्यम से भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं। उनकी सीमा आरंभ और परिग्रह को लेकर के नहीं होती है, और आप लोगों की सीमा जो आरंभ और परिग्रह सहित होती है, इसलिए आपका अलग रहता है, अपना अलग रहता है। तो इस प्रकार दान होता है। भोजनादि दानमपि वैयावृत्यं उच्यते। भोजनादिक दान भी वैयावृत्ति माना जाता। वैयावृत्ति माना मतलब पैर दबावना ही नहीं है। भोजनादिक जो देना लेना ये सारा सारा वैयावृत्ति में आ जाता है। कई लोग शिकायत है हमारे तरफ से कोई वैयावृत्ति नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होती, कई लोग कहते हैं है? और सबसे बड़ा तो वैयावृत्ति तो वही है भोजनादिक देना है? आहार निरंतराय आहार करा देना सबसे बड़ी वैयावृत्ति। निरंतराय, निरंतराय तो दो प्रकार के होते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के निरंतराय करा दे, पेट भर करके भेज देना, यही निरंतराय नहीं। पानी तो दिया नहीं और पेट भर करके भेज दिया तो हाँ, मतलब विवेक के साथ दानादिक करना यह बहुत बड़ा वैयावृत्ति है। सागर वाचरा चल रही थी, सागर की बात है, तो चर्चा के दौरान क्या उठा कि सुबह सुबह की बात है, तो कई लोग जो हैं सुबह नहीं आ पाते, मध्याह्न में कोई विशेष रूप से व्याख्यान या स्पष्टीकरण किया करो महाराज, तो क्या बात हो गई, तो आना चाहिए उन लोगों को भी। सुबह का व्याख्यान होता है, मध्याह्न का व्याख्यान हो जाता है, उन लोगों को भी आना चाहिए। नहीं आते हैं महाराज, एक व्यक्ति ने कहा मारते हैं, तो क्या बात है, यहीं पर आना ही आना है क्या, ये तो विद्वान लोग जाने, इसका नाम स्वाध्याय, ऐसा नहीं है। हम तो यहाँ पर आप बैठे हैं, हम तो वहां पर बैठे हैं, घर में बैठे बैठे हम ये सोचते रहते हैं कि किस ढंग से जो आहार कराया जाए ताकि मध्याह्न का व्याख्यान ठीक हो। ये भी तो बात है, तो अपने ढंग से सोचते हैं, ऐसी बात नहीं, विवेक है या अपने अपने भाव है। इन लोगों ने तो किताब पढ़ने को ही स्वाध्याय समझ रखा है, हम तो सही स्वाध्याय कराना जानते हैं, स्वाध्याय करना नहीं। मंत्र तंत्र आदि। अच्छा, कस्मै दानम, किसको देना चाहिए दान बताते हैं। देखो दान देना, लेकिन किसको देना, तपोधनाय, तप एव धनम यस्य विद्यते तस्मै, तप ही जिनके पास धन है उस तपस्वी। किम विशिष्टा है, और तपस्वी कैसे हैं, गुण निधे, गुण की जो निधि है, गुणानाम सम्यक दर्शन आदि नाम निधि आश्रय, गुणों के जो निधि है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की जो निधि भंडार है उनके लिए। तथा अग्रहाय, भव्य में भाव द्रव्य अगार रहिताय, भाव मकान और द्रव्य मकान, दो प्रकार के मकान होते हैं। तो भाव का अर्थ उस मकान के प्रति प्रति इच्छा रखना या स्वामित्व रखना, ये भाव मकान माना जाएगा। और द्रव्य मकान केवल द्रव्य से रहा, द्रव्य और भाव इन दोनों ग्रहों से जो कि परिग्रहों से रहित हैं, इसलिए वे अग्रह माने जाते हैं। अब देखो तपस्वी का भी विशेषण बन जाता ही है धर्माय, अथवा जो दान देने वाला है वह धर्म के लिए इन्हें दान दे देता है। दो प्रकार के हैं, मतलब धर्म के लिए दान देता है वैयावृत्ति करता है, अथवा धर्म रूप जो अग्रह तपस्वी धनी है उनके लिए दे देता है। धर्म ही धर्म का रूप जिन्होंने धारण कर लिया है, ऐसे धर्मात्मा के लिए, गुण निधि के लिए, तपस्वी के लिए, जिनके पास घर नहीं है उनके लिए वैयावृत दान दिया जाता है। और
अपने लिए भी धर्म हो, धनाए ना, धन के लिए नहीं किंतु धर्म के लिए। जिस प्रकार उनमें धर्म है उसी प्रकार का धर्म मुझे भी मिले, इस प्रकार की वांछा लेकर के तपस्वियों को दान देना यह वैयावृत्ति माना जाता है। किम विशिष्टम तद्दानम, किंतु दान की क्या विशेषता है बताते हैं। अनपेक्षित उपचार उपक्रियम, उपचार की और उपक्रिय उपकरण की जहां पर इच्छा नहीं है उसको बोलते हैं अनपेक्षित उपचार उपक्रिय। उपचार का अर्थ प्रतिदानम, उपक्रिया का अर्थ मंत्र तंत्रादिना प्रति उपकरणम, मंत्र तंत्रादि के द्वारा उपकरण को प्राप्त। न ते अपेक्षिते ये न, देखो अपेक्षिते ये कौन सी विभक्ति है, बोलो पावन सागर जी, अपेक्षिते ये कौन से रूप है, कौन सी विभक्ति है, जल्दी जल्दी इतने चतुर्थी गड़बड़, दोबारा बोलो जल्दी करो, सुमान सागर जी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, हाँ होना चाहिए नहीं डेफिनेट बताओ, तुम लोग भाग रहे हैं इधर के उधर, बोलो जल्दी, की तो गड़बड़ उपदेश देने लगे आप, बोलो बोलो क्या आप निकालोगे, टीका टीका पढ़ो 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 उसको, सामने किताब नहीं है तुम्हारे पास, हाँ हाँ देखो ते आया है, ते के द्वारा तो कम से कम मालूम पड़ना चाहिए था, तो ते तानी हाँ, तो ते ते के तो कहते अपेक, न अपेक्षिते ते उपचार और उपक्रिय जिसमें अपेक्षित नहीं है उसको बोलते हैं अनपेक्षिते, न अपेक्षते अपेक्षित अपेक्षितम अपेक्षिते अपेक्षितानि। चलो अब देखो ध्यान नहीं है, आगे पीछे देखना चाहिए, ये विशेषण किसका है क्या है, ते क्यों आया, अपेक्षिते किसका आया है, कथम तत्दानम विधि द्रव्य आदि संपदा, वह दान कैसे है विधि द्रव्य आदि संपदा से, विभवे न संपदा के द्वारा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव आदि जिसमें लगे हुए रहते हैं उसका नाम यहाँ पर वह दान है, विभव के साथ रहे, प्रतिदान का अर्थ यह है प्रतिफल जिसको बोलते हैं कि हमने दिया प्रतिदान मेरे लिए ले दो बदले में, उत्तर और प्रत्युत्तर, दान तो उन्होंने दिया प्रतिदान आपने क्या दिया, दानम प्रतिदानम इति प्रतिदानम, दानम दानम प्रति दानम इति प्रतिदानम, ऐसा हो कोई आदान की इच्छा के। वैयावृत्ति की परिभाषा बहुत अच्छी की है निरुक्ति के अनुसार, व्यावृत्ति ही दुखात व्यावृत्ति ही इति वैयावृत्यम बन जाता है। अब आगे न केवलम दानम दानम दान में एन वैयावृत्यम उच्यते पितु, हाँ दान ही एकमात्र वैयावृत्ति, ये कर देना वो मैं नहीं है, ये कर देना ये कर देना, ये कर दो। हाँ देख रहे हैं, दान मीन लिखा है देखो वहां पर, न केवलम दान मीन, मीन नहीं है वो ये, न केवलम दानम ये न वैयावृत्तम उच्चते, केवल दान ही वैयावृत्त नहीं कहलाता है किंतु और भी वैयावृत्त कहलाता है। क्या देखो, व्यापत्ति व्यपनोद पदयो संहानम च गुण रागा वैयावृत्तम यावा नुपग्रहोन्यो संयमिना। बहुत विस्तृत क्षेत्र है वैयावृत्ति का, क्या क्या है जो जिस ढंग से हम नहीं कर पाते उसी के बारे में क्यों सोचा जाता है। बहुत कुछ विस्तार है वैयावृत्ति का क्षेत्र, बहुत लंबा चौड़ा। यदि अध्ययन करते हैं तो काम चलता है, वैयावृत्ति करने से काम नहीं चलता, इसलिए अध्ययन ही करना चाहिए। भोजन का भी कभी स्मरण तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक घंटे के लिए जब भोजन करेंगे उस समय अध्ययन तो रुक जाएगा ना, इसलिए सोना भी नहीं चाहिए। धन्य है ऐसा अध्ययन। बिल्कुल ठीक है, ये कह रहे हैं अध्ययन करने वाले को तो कदर होती है और उनके जो है स्वागत होता है, और वैयावृत्ति करने वाले को कोई पूछते ही नहीं और उनको डांट पड़ती है। ऐसे ठीक है। अब जब जो है वो बोलने वाले या पढ़ने वाले जो अध्ययनशील हैं, जब वो मान लो बीमार पड़ जाए और उस समय वैयावृत्ति करने वाले उनके पास न जाए, हाँ उस समय उनको केवल श्लोक सुना दो, व्यापत्ति व्यपनोद, नहीं समझे, इसके द्वारा उनकी वैयावृत्ति हो जाएगी, पंक्तन को हो जाएगी, पैर दब जाएंगे है? ताकि कार्य का आप भूल न जाओ, माता दुख रहा है भूल न जाओ, इसलिए उनको कह दो। आचार्यों ने कहा है जो वैयावृत्ति में यदि कमजोरी रखता है तो वह संग के विघटन में कारण बनता है। परंपरा नहीं, संग संग नहीं रह सकेगा, क्योंकि संग का जो होता है वह वैयावृत्ति के ऊपर ही आधारित है। बिल्कुल, और स्वयं के लिए कोई भी वैयावृत्त नहीं करेगा। वैयावृत्त नहीं करने से आपके पास जो स्थितिकरण है, उपगुण है, वात्सल्य है, ये रह नहीं पाएंगे, और यदि नहीं रह पाएंगे तो आपके सम्यक दर्शन के चार अंग समाप्त हो गए। प्रभावना भी होगी नहीं, कैसी प्रभावना होगी? आप तो एक घंटे अच्छे ढंग से स्पीच दियो और सामने वाला व्यक्ति बैठा है जो आपके साथ हमेशा देता आया है और आपके लिए उनके लिए पूछ भी नहीं रहे हैं कि क्या दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्यों क्या बात है, बोल नहीं रहे हैं, क्या तकलीफ है, पूछते नहीं है, तो उस वैयावृत्ति का कोई उस चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप देखो, इसीलिए ऐसे लोग भी सोचते हैं, इसलिए हमेशा वैयावृत्ति में लगना चाहिए, अपने को अध्ययन से कोई मतलब नहीं, प्रवचन से कोई मतलब नहीं है, वो भी गलत है। अब प्रवचन कौन करेगा? वैयावृत्ति को बिठाओ आप वैयावृत्ति वालों को, वैयावृत्ति के स्थान पर वैयावृत्ति है, ये तीर्थ की वैयावृत्ति है, प्रवचन जो है ये तीर्थ की वैयावृत्ति है, जो कि अन्य जो जैनेतन हैं, जैन धर्म की विशेषता नहीं जानते हैं, उनके सामने इस तीर्थ को रखने से उन सारे सारे व्यक्तियों की वैयावृत्ति हो गई, बौद्धिक वैयावृत्ति हो गई, जिसके माध्यम से पूरे के पूरे आकृष्ट होकर के जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। तो एक व्यक्ति भाव सहित यदि अच्छे ढंग से उपदेश दे देता है तो अनेकों व्यक्तियों की दृष्टि बदल जाती है। तो दर्शनाथ चरणाद वापी वापी ज्ञानातपी चलताम धर्म वत्सले, धार्मिक वात्सल्य को लेकर के
बिल्कुल इतना तो है, लेकिन जो कह दिया जाता है उसको अपने ढंग से कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। क्लासिफिकेशन जो है ना करना इतना ये नहीं है, कठिन नहीं है, जितना कि कहने के उपरांत उसको करना कठिन होता है। व्यक्ति जैसे संकेत दे दे तो उसके अंदर करने लग जाए, दूसरे काम में वह न लगे तो सबसे अच्छा काम और सबसे जल्दी काम होता है। एक को मान लो कह दे कि भैया तुम इसमें पढ़ाने में लग जाओ, जो अब पढ़ने वाला भी सोचता है कि मुझे भी पढ़ाना चाहिए। अब वो तो एक कार्य के द्वारा, एक के द्वारा दूसरा कार्य तो होता नहीं। एक जिस समय कार्य कर रहा दूसरा कार्य करे नहीं, हमें पढ़ाना देखो तो पढ़ाओ। अब सामने वाले व्यक्ति 10 व्यक्ति आते थे, 2 व्यक्ति आने लगे। सुनो सोचो तो सही, सोचो सही। अब 10 व्यक्ति को पढ़ा रहा था एक व्यक्ति, और एक नहीं हमें भी पढ़ाने देने थे, ठीक है तुम भी पढ़ो। अब तो कौन, आप कह दो ना उनको सबको, हम कह देंगे भैया, हम कह देंगे सब लोग सब काम छोड़ करके उनके पास पढ़ने के लिए जाओ। फिर भी वह 2 ही व्यक्ति रह जाए, तीसरे दिन वहां पर तीसरे दिन होगा स्वयं खंबा रह जाएगा, ये तो वह स्वयं रह जाएगा, तो फिर क्या होगा, हानि हो गई क्या लाभ हो गया है? तो इसीलिए ये सोचना चाहिए कि किसी को तप में लगाया, किसी को वैयावृत्ति में लगाया, किसी को उपदेश में लगाया, किसी को अपने पढ़ाने में लगाया, किसी को और जो है लेखन इत्यादि, हम भी लिख लिया। अच्छा पेन किस प्रकार पकड़ना है तो फिर देख लो। निश्चित बात है उसको पता क्या बोल रहे हैं आप, बोलो। ठीक ठीक है, निश्चित बात है। पात्र के चुनाव के बिना यदि कोई कार्य कर दे तो गड़बड़ होता है। हाँ ये है कि जो जिसके लिए जो काम दिया है वह व्यक्ति उस काम को छोड़ करके दूसरा यदि कार्य करता है तो गड़बड़ हो जाता। अभी एक बात बता दे, सुना जाने जी की बात कह रहे ऐसे ऐसे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करना जो है ना बहुत सरल है किंतु करना बहुत कठिन हो जाता है। वो उसका कार्य भी होना चाहिए, जैसे मान लो पढ़ाने के लिए बुद्धि भी अच्छी है किसी की, पढ़ा भी सकता है सब कुछ है, लेकिन उसकी मान्यता भी तो हो। यदि मान लो उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है तो हम कह दें देखो बहुत ये होशियार है, बहुत अच्छी दिन पढ़ा है, हम इससे पढ़ेंगे नहीं, उनका भाव है। और हमारे सामने कहेंगे भी नहीं वो, हम इससे नहीं पढ़ेंगे। अब कैसे पढ़ाएंगे हम उनको बताओ, क्योंकि इसके लिए रेपुटेशन भी चाहिए, यश भी चाहिए, कीर्ति भी चाहिए और प्रभाव भी चाहिए, सुस्वर नाम कर्म का उदय भी चाहिए, और आप लोगों में मान लीजिए थोड़े सहन करने की क्षमता ही चाहिए। केवल डांटने की अपेक्षा से आप पढ़ाना चाहो तो एक दिन पढ़ा सकते हैं, दूसरे दिन जो है आपको कोई भी नहीं। ये देखा जाता, अनुपात भी देखा जाता है। अब किसी को मान लो वैयावृत्ति के लिए भेज दे तो वैयावृत्ति करने वाला व्यक्ति वैयावृत्ति तो करता है लेकिन धीरे धीरे वह कुछ बोलता भी रहता है, नहीं समझे। अब यदि मान लो वैयावृत्ति भी कर लिया, कुछ बोल दिया तो वैयावृत्ति तो हो गई, आहार के लिए उठो तो आहार ग्रास ही नहीं जा रहा उसको। अब क्या हुआ, अब पूछा जाता है गृहस्थों ने आगे कह दिया महाराज उनका आहार नहीं हो, क्यों नहीं हो, कैसे नहीं हो, क्या बात हो गई?
तो कोई नहीं,
तो पूछा जाता है
तुम तो क्या बात हो गई, कुछ नहीं।
अब मुश्किलें मन पर ज्ञान तो है ही नहीं, वैयावृत्ति भी हो गई है, सब कुछ हुई, लेकिन वैयावृत्ति करने वाला एकाध शब्द मान लो छोड़ देता तो रोगी को जो है ना अच्छा भी कभी कभी बुरा लग जाता है, तो बुरा तो और बुरा लग जाता है। मीठा है, मीठा है, लेकिन मीठा होते हुए भी बुखार दिया गया तो उल्टी हो जाती है, कड़वा लगता है।
तो रोगी की स्थिति तो ये रहती
है वैयावृत
मैं वैयावृत कर
मैं मत करो, जो संकेत दिया जाता है उसके अनुसार करो, जितना दिया जाता है उतना ही करो, नहीं है तो कुछ भी मत करो तो बहुत अच्छा है, अपने आप में आप आत्मकल्याण कर जाओगे। बहुत कठिन होता है। तो एक स्थान पर लिखा कि जो व्यक्ति
सब तौर से
सभी प्रकार से योग्य रहता वो अपने आप में बहुत अच्छा काम कर सकता है। उम्र भी ज्यादा चाहिए, अनुभव भी ज्यादा चाहिए।
उम्र कम है
और पढ़ने वाले जो हैं, पढ़ाने वाले की उम्र कम है, पढ़ने वाले की उम्र ज्यादा है,
नहीं समझे?
वो भी अपने अनुभव सुनाता है, नहीं समझे? अब आप वो जब सुना था उसकी बात सुन करके हूँ कह करके समर्थन करेंगे तो ठीक है, नहीं समर्थन करते हैं तो तुम्हारा पढ़ाना बंद हो जाएगा दूसरे दिन। अच्छा, उनकी बात समर्थन करके यदि रह जाते हैं तो हमारा पढ़ाना बंद वैसे ही रह जाएगा कि हम क्या पढ़ाए अब, वो पढ़ा रहा। स्थिति ऐसी होती है, योग्यता,
अनुभव,
समय,
काल,
व्यक्तित्व सब देख करके ही करना पड़ता है, नहीं तो नहीं।
इसके उदाहरण पुराणों में बहुत ढेर सारे पड़े।
विद्वत्ता मात्र प्रस्तुत करना ही पढ़ाना नहीं है, उसके मन में जो धारणा विपरीत है वह छूट जा और इस तत्व के प्रति उसका समर्पण भाव हो जाए, ऐसे भाव जागृत करना चाहिए, उसका नाम है। किसी को कोई नहीं भी पढ़ाता है तो वह थोड़ी भी बात कर देता है तो उसके भाव को वह पूर्ण ग्रहण कर लेता है, तो वही पढ़ा देगा तो काम हो जाएगा उसका।
आज धीरे धीरे शिक्षणालयों में ये कमी होती जा रही है,
समर्पण भाव नहीं है, विनय नहीं है और भीतर से समझाने का उनका भी भाव नहीं है, वे इतनी खो गए सब
सब समाप्त हो ये रहा।
तो अच्छा, व्यापत्ति व्यपनोद, आपत्तियों को दूर करना। आपत्ति कौन सी है ये पहले समझ लेना। पदयो संवाहनम, पद मैंने पैर, चल करके आए हैं उनको पगचंपी करना, पैर दबाना।
कैसे?
क्यों?
गुण रागा, उनके पास रत्नत्रय है,
इस अपेक्षा से उनकी वैयावृत कर लें। वैयावृत करने से पूर्व में सोच ले,
मैं तुम्हारी वैयावृत करने के लिए आया हूँ, याद रखना है,
जिस समय मुझे भी आएगा तो समय आपको आएगा, आना पड़ेगा, लिख करके रख लो। हम एक बार आए, दो बार आए, कहाँ दो बार कहाँ, इसीलिए तो हम याद दिला रहे हैं, हम तीन बार आए हैं, क्या हो गया? तो कैसे वैयावृत होगी, पहले से बांध रहा है वो, है ही नहीं।
गुण रागात, गुण के प्रति राग होने से वैयावृत।
और भी जो कुछ भी है यावान, और कोई भी है, वो सारे के सारे अनुग्रह वैयावृत के रूप धारण कर लेते हैं। किनके वैयावृत? संयम इनाम,
जो मन को और वचन को और काय को और पांच इंद्रियों को संयत रखे हुए रहते हैं उनका नाम संयमी है। उन संयमियों की विशेष रूप से चिंता करके कर लेना चाहिए। व्यापत्तियों विविधा व्याधि आदि जनिता आपद तासाम व्यपनोद विशेषेण उपनोद स्वेतनम यत् तत् वैयावृत्तमेव।
अनेक प्रकार की
आदि व्याधि आदि होती हैं, वो यहाँ पर आपदाएं मानी जाती हैं, उनको दूर करना, विशेष रूप से दूर करना, यह वैयावृत्त माना जाता। तथा पदयो संभानम, पादयो मर्दनम,
और पैर इत्यादि के दबाना।
कस्मात?
क्यों?
गुण रागात,
भक्ति वशात इत्यर्थ। न पुनः व्यवहारा,
दृष्ट फलापेक्षा,
जो देखे हुए सुने हुए भोगे हुए फलों की अपेक्षा से या उपाधि मिलती है, इसलिए ये वैयावृत्तिकार हैं, इस अपेक्षा से वैयावृत्त नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना, वैयावृत्त करने वालों को विवेक भी बहुत रखना चाहिए। विवेक के बिना वैयावृत फलीभूत नहीं होता। भाव तो आपका है, लेकिन भाव जो है ज्ञान भी रखे भाव के साथ, नहीं तो वह वैयावृत विपरीत हो जाते। उस समय डांट भी देख दूसरे को तो भी चल सकता है। मान लो विपरीत वैयावृत कर रहा तो उसको उस समय हम डांट सकते हैं। देखो वैसे ही कोई लोग वैयावृत नहीं करते हैं और वैयावृत करने वालों को आप डांट रहे हैं, इसलिए डांट रहे हैं। वैयावृत का फल क्या होना चाहिए? रोग की निवृत्ति होना चाहिए। और वैयावृत आप विपरीत कर रहे हैं। भाव तो हमारे बहुत शुद्ध है, तो ऐसा कर लो, भाव शुद्ध रख करके यहाँ पर बैठे रहो, करो नहीं, भाव के द्वारा करो। बहुत अच्छा, उत्कृष्ट भाव के साथ वहां पर बैठ करके आप माला फेर दो, इनका ठीक हो जाए, ठीक है। लेकिन उत्कृष्ट भाव के साथ यदि विपरीत आप कार्य करोगे तो निश्चित रूप से बिगड़ जाए। हमारे भाव तो ठीक है, आपके भाव ठीक तो है, लेकिन प्रत भी आपका ठीक है। नहीं ऐसा नहीं, उसका भाव यदि जुड़ेगा आपके साथ, सुनिए, उसका भाव यदि आपके साथ जुड़ेगा तो ही आपका वैयावृत फलीभूत होगा, अन्यथा फिर या तो उसके लिए इंजेक्शन दे दो, बेहोश कर दो, फिर बाद में व्यक्ति कर दो। हमें तो वही तो कह रहा ना, इसलिए उसको बेहोश कर दो।
जैसे
हमें तो वही तो कह रहा ना, इसलिए उसको बेहोश कर दो।
जैसे ऑपरेशन करना है
ऐसे कैसे
समता भाव हो नहीं सकता हो।
आपके ऊपर उसका भरोसा नहीं है ना,
इसलिए
हाँ इसलिए निषेध कर रहा है। हमें नहीं चाहिए
उन्हीं जैसी चर्या में अचित सदा।
हाँ
उस संकोच को दूर करने का पहले उपाय करिए आप, फिर बाद में आप करिए। पहले मेहमान, देखो मेहमान संकोची आया है, अब आप संकोच मत करिए, संकोच मत करिए, ऐसा नहीं होगा। वह संकोच अपनी सीमा तक रहेगा,
उसके थोड़े अच्छे ढंग से भूख लगने दीजिए, कुछ बातें उनको ऐसे कर दीजिए जैसे वह हम तुम ये दोनों एक हैं,
ऐसा हो जाए। अपना तो अपना लो, अपना लो, अपना लो, अपना लो, फिर इसके उपरांत भूख लगी है, फिर इसके उपरांत वो भले ही नहीं मांगेगा, लेकिन आप परोस देने लग जाएंगे तो वो यही से करेगा, बस 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 करने के उपरांत भी तीन बार खिलाया गया फिर भी कुछ नहीं, और तुम बस बस कर रहे हो और खा भी रहे हो, ऐसे यदि बोलोगे बीच में तो इसीलिए कहते हैं कि खिलाने के लिए वैयावृत करने के लिए एक उपाय अच्छे ढंग से सोचना चाहिए। ये भी एक कला है। पद्म पुराण हम पढ़ रहे थे, जहां तक स्मरण है तो 72 कलाएं या 64 गुणे के होते हैं ना, तो उनमें से एक कला के बारे में वर्णन चल रहा था। तो कई प्रकार की मालिश होती है, हल्की मालिश है, फूल मालिश है, पहलवानी मालिश है, मर्दन है, ऐसा 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 ऐसा, जिसके द्वारा वह ठीक हो जाता है। फिर इसके उपरांत तन का मालिश तो हो गई है, अब मन का मालिश कैसे? रविशेर महाराज जी ने कहा कि मन की मालिश कैसे करें, तो मृदु वचन, मधुर वचन, मृदु वचन। मधुर तो होते हैं लेकिन व्यंगात्मक हो जाते हैं तो मधुर नहीं रहते हैं, ये होता। तो मृदु वचन, वचन ऐसे हो जो मृदुता को लिए हुए हो, ताकि मन की मालिश हो सके, मसाज ऑफ माइंड। मन की मालिश है तो मन की मालिश और पालिश अच्छे ढंग से आप कर लो, तो फिर तन के प्रति वह कहता कि भैया मुझे मत करो, वह भीतर के भाव से होती है, नहीं तो नहीं होती। तो पदयो मर्दनम कस्मात गुण रागा, भक्ति गुण राग के साथ। अब देखो गोद में लड़का है, दूध पीने के लिए आया है, आप पिला रहे हैं, चम्मच हाथ में है, अब एक चुटकी भी मान लो बजा रहा, वह भीतर के भाव से होती है, नहीं तो नहीं होती। तो पदयो मर्दनम कस्मात गुण रागा, भक्ति गुण राग के साथ। अब देखो गोद में लड़का है, दूध पीने के लिए आया है, आप पिला रहे हैं, चम्मच हाथ में है,
अब ये चुटकी भी मान लो बजा रहे हैं आप, लेकिन चुटकी बजाते हुए आंख क्यों दिखा रहे हैं? नहीं समझे, चुटकी तो बजा रहे हैं तो कान तो भी सुन लेगा, चुटकी बज रही है उसके साथ और भी कुछ हो रहा है क्या? यूं देख लेता है, वो देख लेता, अरे चुटकी तो बज रही है, किसकी चुटकी है? चुटकी की आवाज के अनुरूप दृष्टि देखने में नहीं आ रही है, इसलिए एकदम वो अपने पैर यूं यूं करने लग जाता ताकि गोद से वह बाहर उछल जाए। ऐसा क्यों है? वो समझता है, बोल समस्त समझता है, वो सब समझता है, आपकी एक 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 टिक पकड़ता। तो आपकी वह वैयावृत्ति मन की वैयावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए चाहिए न केवल एतावत एव। अच्छा ठीक, गुण रागा एतावत एव वैयावृतम, किंतु अन्य अपनी संयम नाम देश सकल वर्ता नाम संबंधे, और भी संयमी देश वृत्ति सबके यावान यत परिमाण है उपग्रह उपकार, जो कुछ भी आप उनके ऊपर उपकार कर सको वह सारा का सारा वैयावृत्ति के रूप में होता है, लेकिन वह उपकार को स्वीकार करे तभी यह बात बन सकती है, अन्यथा नहीं, ये ध्यान रखे। स्वीकार करना आवश्यक, सर्व वैयावृत्तम ये उचित है, वह सारा का सारा वैयावृत्ति कहलाता है। एनम नहीं, न केवल ये लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल लगा दिया इतना पर्याप्त है। न केवलम दानम ये न वैयावृत्ति मुच्यते, हाँ ठीक है, वैयावृत्ति ही दान जो है वैयावृत्ति ही मात्र नहीं कहलाता, और भी येन मैंने सुनो सुनो येन मैंने तृतीया के वचन हेतु वाचक है, नहीं गलत है, येन ठीक है। अब ये ठीक है कि एक और है, सुनो सुनो एक और है, नहीं नहीं वो ठीक है, देखो दानम, फिर ये दानम, यह दानम ऐसा होना चाहिए था, येन येन यदि लिख देते हैं तो दानम होना चाहिए था, दानम लिखा नहीं गया, ये तो दानम एव के व का समर्थन हो जाएगा। अब देखो इसमें विभक्ति के क्या होना चाहिए, येन यदि वहां आप सामने लिख देते हैं तो दानम होना चाहिए, दानम यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, नहीं हाँ ये लिखना चाहिए दानम एव, एवं नहीं है, ये भी ध्यान रखना, एवं कहा था, एवं कैसे कहा जो निकलेगा वो, एवं नहीं एव, न कले न केवलम दानम एव वैयावृत्तम उच्यते, केवल वैयावृत्त दान को ही नहीं कहा जाता किंतु और भी है, ये इसका ठीक तो है, एवं क्यों यत परमाणु उपग्रह उपकार, जो कोई भी आप उपकार करो अनुग्रह कहो वो सारा का सारा वैयावृत्ति ने दान में आ जाता है। अब देखो, अब दाता जो होता है उसके भी गुण होते हैं, आग्रह वाले धनी गुण को धनी धर्म तपस्वी के लिए दान देना चाहिए, ठीक है, ये पात्र का विश्लेषण हुआ, किंतु अब दाता का विश्लेषण करते हैं, नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाना मार्याना मिष्यते दानम, नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अप्सूनारंभाना मार्याना मिष्यते दानम। को अपसूना आरंभानाम आर्यानाम, सुने से रहित आरंभ से रहित, पंच सुने नीचे बताएंगे, आरंभ भी आपको ज्ञात हैं, इनसे जो रहित आर्य हैं, हैं तपस्वी हैं, उनके लिए दान दिया ना चाहिए, किंतु कैसे देना चाहिए, नव पुण्यै नवदा भक्ति पूर्वक, भक्ति को नवदा भक्ति को ही पुण्य का रूप किया, यानी पुण्य कार्य करने के लिए नव भाव होना चाहिए, यह सब जो कार्य किया जा रहा है इसके लिए नव प्रकार की विधि भक्ति होनी चाहिए। प्रतिपत्ति का अर्थ यहाँ पर देना आदर पूर्वक वैयावृत्ति इत्यादि में आ जाती है। सेवा सप्तगुण समाहित न शुद्ध न, सात गुणों से जो युक्त हो देने वाला और शुद्ध हो, सात गुणों से शुद्ध हो युक्त हो और शुद्ध हो, वह नव नवधा भक्ति पूर्वक उन आर्यों को जिनके पास सुना और आरंभ नहीं है, उनकी जो प्रतिपत्ति वैयावृत्ति करता है, दान देता है, उसका नाम यहाँ पर दान माना जाता है। दानम इच्छते कासौ प्रतिपत्ति गौरवा आदर स्वरूपा, देखो आदर के साथ वह प्रतिपत्ति सेवा होनी चाहिए। केशाम किसके लिए, आर्यानाम सदर्शनादि गुणोपेत मुनीना, वह उनकी आदर स्वरूप गौरव प्रतिपत्ति मानी जाती है जिनके पास सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र विद्यमान है, और वो कैसे हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र से युक्त होते हैं, तो अपसुना रंभानाम सुना पंच जीव घात स्थानानी, सुना किसको बोलते हैं, जहां पर जीव घात का कारण होता हो उसका नाम सुना है। जो पांच सुने होते हैं, इन पांच सुने से जो रहित होते हैं, अब सुना रहा, और आरंभ से रहित होते हैं, उसको बोलते हैं खंडनी पेश।